धन्यवाद अनुवाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। गदाधर पंडित का भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ था। यह प्रेम रुक्मिणी देवी जैसा था जो सदैव कृष्ण के प्रति विनीत बनी रहती थी। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, आज गदाधर पंडित जी का प्राकट्य दिवस है। श्री गदाधर पंडित प्राकट्य दिवस महामहोत्सव की। इस संसार में बद जीवों के लिए एकमात्र आशा की किरण ये है कि हम लोग भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों का गुणगान करें। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों का गुणगान करके ही हम लोग इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं। इसलिए जो प्राकट्य दिवस आते हैं ये हमारे लिए बहुत सुनहरी अवसर होता है कि हम इनके कुछ महिमा की चर्चा करें और अपने आप को शुद्ध करें। लेकिन भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो इस भौतिक जगत के आदान प्रदान की तरह नहीं होता, और उनकी डीलिंग्स को समझना एक बदजीव की बुद्धि से परे है। ये जो विषय है ये हमारे ब्रेन मैटर मस्तिष्क पर निर्भर नहीं करता, हमारी बुद्धि पर निर्भर नहीं करता, ये पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर करता है। जब तक चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं होगी तो हम चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है उसको समझ नहीं पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु की हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं आज गदाधर पंडित जी का हृदय से गुणगान करके। और अगर किसी प्रेमी भक्त का गुणगान भी करना है तो हमें उनके विषय में जानना होगा, और भक्त के विषय में जानना तो बहुत गहरा विषय है। तो हम लोग तो केवल यही योग्यता है कि जो हमने सुना है जो समझा है उसको हम दोहराएं, दोहराने का प्रयास करें, और इसी प्रोसेस में अपने आप को हम शुद्ध करें। तो मैं विशेषकर स्पेशली प्रे टू हिज होलीनेस भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज दैट आई कैन रिपीट व्हाट एवर आई हैव अंडरस्टूड अबाउट श्री गदाधर पंडित। तो प्रयास करूंगा जो कुछ हमने सुना है वरिष्ठ वैष्णवों से उसको हम दोहराने का प्रयास करें, और गदाधर पंडित जी की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त कर सके। गदाधर पंडित जी का विषय बहुत ही गहरा है, बहुत ही गूढ़ है। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। जो पंच तत्व का मंत्र हम बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसमें पंच तत्व है, पंच तत्वात कम कृष्ण भक्त रूप। भक्त रूप कौन हुए? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। भक्त रूप भक्त पंच तत्व का कृष्ण भक्त रूप स्वरूप कम स्वरूप हुए नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतार हुए अद्वैताचार्य, और भक्ताख्यम श्रीवास पंडित। नमामि भक्त शक्ति कम, जो शक्ति है वो कौन है? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जी को श्रीमती राधा रानी का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी हैं। गौर गणदेश दीपिका में बताया जाता है कि स्वयं वृषभानु नंदनी गौर लीला में गदाधर पंडित के रूप में आई हैं, और ललिता सखी हमेशा जहां जहां राधा रानी जाती हैं ललिता सखी उनका पीछा करती हैं। इसलिए ललिता सखी का एक नाम है अनुराधा, जो राधा रानी के पीछे चले। तो जब राधा रानी यहां आई हैं गदाधर सखा के गदाधर पंडित के रूप में, तो ललिता सखी भी गदाधर पंडित के अंदर ही हैं। तो गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी भी हैं और ललिता सखी भी हैं। ये गौर गणदेश दीपिका में कवि कर्णपूर्ण कहते हैं। चैतन्य चंद्र उदय में प्रभु राम सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ललिता सखी और श्रीमती राधा रानी भगवान की दिव्य शक्ति हैं, और भगवान की दिव्य शक्तियों में अंतर नहीं है। और जहां भगवान की दिव्य शक्ति है भगवान हरि भी वहां पर होते हैं। तो गदाधर पंडित में भगवान हरि भी हैं। तो गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं, ललिता सखी हैं और भगवान हरि भी हैं। तो बहुत गुड़ विषय है। आपको ये पूछ सकता है, हमने तो अभी तक ये सुना है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, तो फिर अलग से राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में क्यों आई है? हर चीज के पीछे प्रयोजन होता है, आप बात समझ रहे हैं? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, और हम बोलते हैं कि राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आई है, तो क्या इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं इस धराधाम पर तो अपने श्री कृष्ण के जो द्वापर युग की तीन इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो तीन इच्छाएं क्या हैं कि कृष्ण राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझ सके और उस महिमा के आधार पर जो राधा रानी कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते हैं उसका आस्वादन कर सके और इस माधुर्य का आस्वादन करने के बाद जो असीम आनंद प्राप्त करते हैं उस आनंद को प्राप्त कर सके। तो कृष्ण की इन तीन इच्छाओं की पूर्ति की सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का महाभाव चुरा लेते हैं और महाभाव चुरा के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण ने महाभाव चुरा तो लिया लेकिन उसको अभी तक समझ नहीं पाए। गदाधर पंडित सहायता करते हैं इस महाभाव को समझने के और जब राधा रानी से महाभाव चुरा लिया जाता है तो राधा रानी बिल्कुल उनकी स्थिति एक भिखारी की तरह हो जाती है, पूर्ण रूप से खोखले, एम्प्टी, बहुत ही दयनीय स्थिति। और उनके अंदर जो बचता है वो दक्षिण भाव बचता है, वो है रुक्मिणी का भाव। और इसलिए श्रीमती राधा रानी जिनका महाभाव चुरा लिया गया है वो पीछे के पीछे कृष्ण के पीछे भागती हैं कि महाभाव मुझे कब वापस मिलेगा। और ये राधा रानी गदाधर पंडित है जिनका महाभाव चुरा लिया गया है। राधा रानी माइनस महाभाव इस गदाधर पंडित, और वो क्या है, रुक्मिणी देवी रे या छे दक्षिण स्वभाव। राधा रानी का स्वभाव है वाम स्वभाव। वाम स्वभाव का अर्थ है एंग्री मूड। भगवान राधा रानी के चरणों को अपने सर पे लगाते हैं, स्मरण गरल खंडनम मम शीरसी वंदनम देही पद पल्लव उदारम। जयदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि उनके मान को भंग करने के लिए, मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने शीर्ष पे रखने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहां पर हम देखेंगे ऐसी लीलाएं जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को इग्नोर कर रहे हैं। महाप्रभु उनके अंदर प्रणय रोष देखना चाहते हैं, गुस्सा देखना चाहते हैं, लेकिन गदाधर पंडित बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत सहनशील हैं, सब कुछ सहन कर लेंगे, बहुत संकोच करते हैं लेकिन अपना क्रोध प्रकट नहीं करते। महाप्रभु उनसे और इग्नोर करते हैं, और गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, लेकिन गदाधर पंडित सब सहन करते रहते हैं। तो इस समझ कर रहे हम लीलाओं का जब श्रवण करेंगे तो उसका अच्छा ढंग से आस्वादन कर पाएंगे। जिस ढंग से भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी देवी से प्रयास करते हैं कि अरे भाई तूने मुझसे विवाह क्यों किया, मुझसे श्रेष्ठ तो शिशुपाल थे, जरासंध थे, मैं तो तुम्हारे योग्य भी नहीं हूं, मेरे तो परिवार का भी नहीं पता, खानदान का भी नहीं पता, लंपट हूं, ग्वाल बाल हूं, कभी कहां कभी कहां, मेरा तो कोई चरित्र ही नहीं है, तुम एक राजकुमारी हो, सुंदर हो, किसके चक्कर में फंस गई, एक नया दोबारा से विवाह कर लो। भगवान रुक्मिणी से ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि भगवान चाहते थे कि रुक्मिणी कुछ तो क्रोध करे। लेकिन रुक्मिणी देवी क्या कर रही थी, चुपचाप सर झुकाकर सुन रही थी। और सर झुकाते झुकाते जब इतना कुछ सुना तो उनको लगा कि कृष्ण मुझसे छूट ना जाए, अलग ना हो जाए। इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य। प्रेम वैचित्र्य का अर्थ है कि प्रेमी और भगवान साथ साथ में हैं लेकिन भक्त को ये लगता है साथ में होते हुए भी विरह का अनुभव करते हैं। विप्रलंब में विरह में होते हुए मिलन का अनुभव करते हैं और प्रेमी वैचित्र में मिलन में होते हुए विरह का अनुभव करते हैं। तो उनकी डर है कि भगवान हमसे निकल ना जाए, भगवान हमसे अलग ना हो जाए, तो इसी पीड़ा में वो बेहोश हो जाती है। तो ये रुक्मिणी का दक्षिण स्वभाव है, सब कुछ सहन करती रही लेकिन उन्होंने कृष्ण में कभी क्रोध नहीं किया। और चैतन्य महाप्रभु बाबर उनको क्रोध दिलाने का प्रयास भी करते हैं। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होता है किस दिन, अष्टमी के दिन। श्री कृष्ण का प्राकट्य किस दिन होता है, अष्टमी के दिन। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। अष्टमी अष्टमी दोनों बोलो तो क्या बन जाएंगे, पूर्णिमा है ना। तो पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। लेकिन गदाधर पंडित का प्राकट्य आज क्या है, अमावस्या। अमावस्या के दिन हुआ क्योंकि सारा का सारा महाभाव चुरा लिया गया, कुछ नहीं बचा। तो गदाधर पंडित का प्राकट्य अमावस्या के दिन हुआ, ये इंगित करता है कि पूरा का पूरा महाभाव चुरा लिया गया। और जब गदाधर पंडित का जो प्राकट्य भी हुआ वो वेलेटी ग्राम में हुआ। वेलेटी ग्राम बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है, सूखा, और नवद्वीप बहुत ही हरा भरा, हम जाते हैं नवद्वीप में। तो उनका प्राकट्य भी उस स्थान पे हुआ और अमावस्या के दिन हुआ, इसे दिखाते हैं कि पूर्ण रूप से वो खाली थे एकदम, और उस महाभाव को प्राप्त करने के लिए वो बार बार कृष्ण के पीछे भाग रहे थे। चैतन्य महाप्रभु हमेशा साथ रहते थे। तो ये महाभाव श्रीमती राधा रानी का प्रॉपर्टी है, भगवान वैसे बताते हैं ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगतम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है वो सब मेरी भगवान स्वामी है, लेकिन जो महाभाव है वो श्रीमती राधारानी की प्रॉपर्टी है। और ये महाभाव निश्चित रूप से चोरी तो कर लिया गया है लेकिन वापस तो मिलेगा ही। अब जो श्रीमती राधारानी को ये महाभाव लौटाने में सहायता करते हैं उस भक्त को विशेष कमीशन मिलती है, इनाम मिलता है राधारानी के द्वारा। इसलिए गौर गदाधर की जो पूजा है बहुत ही ऊंचे स्तर की है। जब गौर गदाधर की पूजा करते हैं भक्तगण, ये कनिष्ठ अधिकारी का विषय नहीं है। गौर गदाधर के मतलब गौर जो कि भगवान श्री कृष्ण जिनके पास राधारानी का भाव चुरा के रखा हुआ है, और साथ में खड़ी है राधारानी जिनका महाभाव चुरा लिया गया है। तो जो भक्त हैं, जो भक्त विनोद ठाकुर जी सुरभि कुंज में जो गोद्रम द्वीप में जो पूजा करते हैं गौर गदाधर की, वो गौर गदाधर को राधा कृष्ण के रूप में देखते हैं। तो ये जो पूजा है गौर गदाधर की ये सामान्य भक्तों के लिए नहीं है, बहुत उच्च स्तर के भक्तों के लिए है। तो इस ढंग से ये गहरा तत्व है। और जब हम एक बार तत्व को समझने का प्रयास करके फिर आगे हम लीला का विचार करेंगे, हमें जाना चाहिए जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांग रसंगी गाने नित्य सिद्ध करी माने से जाय ब्रजेंद्र सुत पाश, से जाय ब्रजेंद्र सुत पाश। गौरांग संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, ये बातें हमें समझ में नहीं आएंगी, ये बातें बहुत ऊपर की हैं। हम माने नित्य सिद्ध करी माने, जो गौरांग के संगी गण है प्रेमी भक्त है नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध विशुद्ध सत्व में स्थित है, ये माने मात्र से जाए बजेंद्र सुत पाश, वो उनको बजेंद्र सुत श्री कृष्ण के चरणों के शरण प्राप्त हो गए। तो हम केवल इतना समझ सकते हैं। और गौरांग महाप्रभु और गदाधर पंडित जी के बीच में कुछ बहुत सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं हुई, उनका हम चर्चा कर सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में जब गौरांग महाप्रभु और गदाधर पंडित जी के लीलाओं का वर्णन करते हैं तो उसका श्रुति फल भी बताते हैं। और ये श्रुति फल ये है कि जो इन लीलाओं को सुनता है बहुत ही शीघ्र उसको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त हो जाती है गदाधर पंडित जी की। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम कुछ लीलाओं पर चर्चा करेंगे। और जब गदाधर पंडित का जन्म वेलेटी गांव में हुआ तो 12 वर्ष तक वे वहां पर रहे। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो 12 वर्ष तक वो वेलेटी गांव में रहे। उनके पिता का नाम था माधव मिश्र और माता का नाम था रत्नावती। फिर 13 साल के जब हुए तो फिर वो नवद्वीप में आए। आप सबने देखा होगा कि गदाधर पंडित जी का जो घर है बहुत दूर नहीं है, जहां सचिनंद माता का घर था जगन्नाथ मिश्र घर से बिल्कुल पास में ही है। अगर आप नवद्वीप में गए हैं तो बाद में फिर वो वहां पर आ जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। गदाधर पंडित बहुत ही शांत स्वभाव के, संकोच करने वाले सज्जन व्यक्ति थे, शील। और महाप्रभु निमाय पंडित उद्दंड, चंचल, चपल बालक, घमंडी, हरेक से तर्क करना, सबको हराना, सबका मजाक उड़ाना। तो गदाधर पंडित उनको बहुत अवॉइड करते थे। जहां चैतन्य निमाय जाते थे गदाधर पंडित उल्टे डायरेक्शन में जाते थे, लेकिन निमाय पंडित उनको जबरदस्ती पकड़ लेते थे। एक बार ऐसे ही गदाधर पंडित को निमाय पंडित देखा, पकड़ लिया, अरे गदाधर यहां पर आओ, बोलो मुक्ति का क्या मतलब है। तो गदाधर पंडित ने बताया मुक्ति का अर्थ है तीन गुणों से मुक्ति पाना, दिव्य स्थिति में स्थित होना। निमाय पंडित बोला बिल्कुल गलत, जाओ वापस जाओ, पढ़ के आना, कल मुझे फिर बताना। गदाधर पंडित ने बोला ये बहुत हो गया, हद हो गई, इतना घमंड इसमें। और फिर निमाय पंडित बोले देखो एक दिन मैं भी तुम्हें वैष्णव बनकर दिखाऊंगा, और ऐसा वैष्णव बनूंगा कि मेरे घर पे स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी आएंगे मुझे प्रणाम करने के लिए। गदाधर पंडित बोला ठीक है ठीक है, जो बोल रहे। सारे के सारे नवद्वीपवासी परेशान थे, एक निमाई क्या है, इतना उद्दंड, इतना वो। फिर वहां पर एक बार नवद्वीप में स्वयं ईश्वरपुरी पाद आते हैं, और जब ईश्वरपुरी पाद गोपीनाथ आचार्य के घर में कथा करते हैं, गदाधर पंडित अभी बहुत छोटे से हैं, बालक है, उनको कृष्ण कथा सुनने में बहुत रुचि है। और ईश्वरपुरी जब देखते हैं गदाधर पंडित में इतनी रुचि है तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। ईश्वरपुरी जी ने ग्रंथ लिखा था कृष्ण लीलामृत, वो उनको सुनाते हैं। तो एक बार ईश्वरपुरी के साथ गदाधर पंडित जा रहे थे तो गंगा के तट पे निमाई अपने संगियों के साथ बैठे थे, कुछ कथा कर रहे थे। और निमाई पंडित बहुत ही सुंदर थे, तो जब बाद में कदा पंडित ने बताया कि ये है निमाई पंडित, हमारे नवदीप के सबसे विख्यात पंडित, बड़े बड़े ब्राह्मणों को इन्होंने हराया हुआ है। तो ईश्वर पर बहुत इंप्रेस हुए, अच्छे है, बोले जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। तो ईश्वर पुरी ने बताया थोड़ा मेरा परिचय कराइए इनसे। तो गदाधर पंडित, गदाधर पंडित हैं जिन्होंने ईश्वरपुरी पाद का परिचय निमाई पंडित से कराया। तो निमाई पंडित पहली बारी कुछ विनीत हुए जब ईश्वरपुरी को देखा, उन्होंने प्रणाम किया और फिर ईश्वरपुरी को आमंत्रण दिया कि आप हमारे घर में आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। इसके बाद ईश्वरपुरी पाद जाते हैं उनके घर में, प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर बाद में गया में जाके चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जब उनसे दीक्षा ग्रहण प्राप्त करते हैं तो निमाई पंडित के अंदर सब कृष्ण प्रेम के लक्षण उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। सची माता समझते हैं कि शायद उसको ऊपर की वायु लग गई है, पागल हो गया है, तरह तरह के इलाज करते हैं लेकिन निमाई ठीक नहीं होते और रात दिन क्रंदन करते रहते हैं, कृष्ण 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 कहकर रोते रहते हैं। तो एक बार गदाधर पंडित जब घर में आते हैं निमाई पंडित के, तो देखते हैं कि निमाई के हाथ में सुपारी है और कुछ पत्तियां हैं और वो गदाधर पंडित से पूछते हैं क्या तुमने उस श्याम सुंदर कृष्ण को देखा है जिसने पितामह धारण किया हुआ था, सर पे मोर पंख लगाया हुआ था, क्या उसको देखा है, वो कहां है? तो जब ऐसे वो प्रश्न पूछते थे रो रो कर, सच्ची माता और सब रोना शुरू कर देते, किसी को समझ में नहीं आता था कि निमाई को कैसे रोके। लेकिन गदाधर पंडित ने बड़े साहस से उत्तर दिया, हाँ अरे ये कृष्ण तो सनातन रूप से आपके हृदय में है। जब इसने उस साहस से जब उत्तर दिया तो निमाई को मालूम चला कि कृष्ण मेरे हृदय में है। तो निमाई अपने नाखूनों से अपने वक्षस्थल को वेदन छीनने लगे, कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण। जब ऐसे करने लगे तो गदाधर पंडित ने बड़े जोर से उनके बाजू को पकड़ा, अरे रुको रुको रुको, कृष्ण यहां पर प्रकट होने वाले हैं, थोड़ा शांति रखो। जब इतने ढंग से ऐसे बोला तो निमाई पंडित शांत हो गए। सच्ची माता बहुत प्रसन्न हुई। सच्ची माता ने बोला कि निमाई की स्थिति को देखकर तो मैं तो घबरा जाती हूं, तुमने इतने अच्छे और इतने परिपक्व तरीके से निमाई को संभाला, मेरा तुमसे एक ही निवेदन है कि तुम हमेशा निमाई के साथ रहना। उसके बाद गदाधर पंडित हमेशा निमाई पंडित के साथ रहते थे। और जब निमाई पंडित ने संन्यास लेकर नीलाचल में गए तो गदाधर पंडित उनके साथ जगन्नाथपुरी चले गए और गदाधर पंडित ने वहां पर क्षेत्र संन्यास ले लिया। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है कि वो जगन्नाथपुरी को अब छोड़कर नहीं जाएंगे। और गदाधर पंडित विख्यात थे अपने भागवतम के पाठ के लिए। गदाधर पंडित भागवतम का पाठ करते थे, चैतन्य महाप्रभु उनसे सुनते थे। और सबसे ज्यादा कथा, दो कथाएं चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से सुनी, वो कौन सी कथाएं थी? प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के। लगभग 100 से भी ज्यादा बारे चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से कथाएं सुनी। जब गदाधर पंडित भागवतम पढ़ते थे तो भागवतम पढ़ते पढ़ते उनके आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी, और ऐसी अश्रुधारा बहती थी कि जो भागवतम लिखा होता था वो पूरे पूरे उसके अक्षर मिट जाते थे। ये है भागवतम पढ़ने का असली तरीका। हम लोग पढ़ते हैं तो सोते सोते पढ़ते हैं। तो गदाधर पंडित बहुत भागवतम का पाठ करते थे। तो एक सुंदर लीला आती है कि चैतन्य महाप्रभु बार बार प्रयास करते थे वृंदावन जाने के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु उनको टालते रहते थे, अभी क्या जाना, अभी वर्षा है थोड़े बाद में जाना, अभी चतुर्मास चला थोड़ी देर बाद जाना। हालांकि महाप्रभु स्वतंत्र हैं लेकिन अपने पार्षदों के कहने पर चलते, बोले ठीक है अभी नहीं थोड़ी देर बाद जाएंगे। जब बहुत हो गया अभी महाप्रभु बोला अब तो जाने दो, बोले ठीक है चल अब चले जाओ। तो विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन महाप्रभु वृंदावन के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। राजा प्रताप रुद्र ने सब के सब प्रबंध कर दिए। जब गदाधर पंडित को मालूम चला कि महाप्रभु जा रहे हैं वृंदावन तो भागकर उनके पीछे आए। और ये बहुत सुंदर लीला है और इस लीला का श्रुतिफल पहले बता देते हैं आपको ताकि आप ध्यान से इसको सुनेंगे। प्रेमा विव्रत इहा सुने ये जान, अचिरे मिलिया तान चैतन्य चरण। ये जो बहुत ही प्रेम विव्रत आगे समझाएंगे क्या है, गदाधर पंडित और महाप्रभु बीच में प्रेम व्रत की लीला है। जो इनको सुनता है अचेरे मिलिए तानर चैतन्य चरण, अचेरे का मतलब बहुत जल्दी, उसमें समय नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र उनको क्या मिल जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान पूर्वक हम इस लीला को सुनेंगे। तो गदाधर पंडित जब संगीत चलीले क्षेत्र संन्यास ना छड़िया प्रभु निशा दिले। जब गदाधर पंडित उनके साथ जाने लगे तो भगवान ने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपने क्षेत्र संन्यास की प्रतिज्ञा ली हुई है, उस प्रतिज्ञा को आप नहीं तोड़ेंगे। तो गदाधर पंडित ने क्या कहा, प्रभु कहे जहां तुम्हें सही नीलाचल
क्षेत्र संन्यास मोरे योकर रसातल, भाड़ में क्या रसातल, भाड़ में क्या मेरा क्षेत्र संन्यास, टू हेल विद माई क्षेत्र संन्यास। कहां गया क्षेत्र संन्यास? रसातल में, सबसे नीचे वाले नरक लोक में। अरे जहां आप हैं वही नीलाचल है। मैंने क्षेत्र संन्यास क्यों लिया था? ताकि आपके साथ नीलाचल में रहूं। जब आप नीलाचल छोड़ के जा रहे हैं तो क्षेत्र संन्यास का फायदा क्या? रसातल में जाएगा क्षेत्र संन्यास, मुझे नहीं लेना। महाप्रभु क्या बोलेंगे? प्रभु कहे यहां कर गोपीनाथ सेवन। अरे भाई क्षेत्र संन्यास की बात छोड़ो, यहां गोपीनाथ की सेवा कौन करेगा? तो गदाधर पंडित क्या उत्तर देते हैं? प्रभु कहे कोटि सेवा त्वत्पद दर्शन। अरे आपके चरणों के दर्शन कर लिए तो करोड़ों करोड़ों गोपीनाथ जी की सेवा का फल मिल जाएगा। प्रभु कहे सेवा छड़ी बे अमाय लागे दोष, यहां रही सेवा कर अमार संतोष। अरे भाई आप सेवा छोड़ के जाओगे, दोष किसको लगेगा? मुझे लगेगा। यहां ना के सेवा करो, मैं इसमें संतुष्ट हूं, मेरे साथ मत चलो। अब क्या बोले भगवान को? पंडित कहे सब दोष हमारा ऊपर। आपको दोष नहीं लगेगा, दोष मुझे लगेगा। तुम्हारा संगे ना जाइबे जाइबे एक बार। आपके साथ जाऊंगा तो सारा रिएक्शन आपको मिलेगा ना, मैं आपके साथ जाता ही नहीं, अलग से जाता हूं। दोष मैं ले लेता हूं, प्रतिज्ञा तोड़ने का, क्षेत्र संन्यास तोड़ने का भी दोष मैं ले लेता हूं, गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ने का भी दोष मैं ले लेता हूं। आपके साथ नहीं चलूंगा, बस आप पे दोष नहीं आएगा, मेरे पे दोष आएगा। ठीक है। एक एक देखी ते जावे ना जावे तो मा लागे, प्रतिज्ञा सेवा त्यागे दोषे तार आम भागी। मैं तो वहां पर सच्ची माता को देखने जा रहा हूं, आपके साथ तो जा ही नहीं रहा, और इसका जो जो दोष लगेगा उसकी मैं जिम्मेवारी उठाता हूं, आपको क्या दिक्कत है? तो ये बोलकर वो अलग अलग चलने लगे। चैतन्य महाप्रभु आ गए, अपने उनके अलग अलग चलने लगे। पहुंचे पहुंचे फिर वो कटक पे पहुंचे। जब कटक में पहुंचे तो महाप्रभु ने क्या किया? फिर जबरदस्ती गदाधर पंडित को बाजू से खींच कर लाए। ताना रचरित्र प्रभु अंतर संतोष, ताना रहाती धारे कहे करी प्रणय रोष। इससे पहले बता रहे हैं कृष्णदास कविराज जी कि गदाधर पंडित के इस व्यवहार से महाप्रभु संतुष्ट थे कि गुस्से में थे? गुस्से में थे, संतुष्ट थे? बाहर से गुस्से में थे और अंदर से बहुत खुश थे, है ना? प्रभु अंतर संतोष, अंदर से बहुत संतुष्ट थे और बाहर से प्रणय रोष, प्रेम का गुस्सा दिखा रहे थे। प्रणय मीन्स प्रेम, रोष मीन्स गुस्सा, प्रेम का गुस्सा दिखा रहे थे। तो महाप्रभु ने बोला आमार संग रहित चाहा वांछा ने जसोक, तुमार दुई धर्म जाए आमार हाये दुख। तुम जो मेरे साथ चलने चाहते हो ना, ये तुम्हारी इंद्र तृप्ति की इच्छा है। देखिए भगवान भक्त और ऐसा बोल दें, तुम मेरे साथ चलने चाहते हो ना, ये इंद्र तृप्ति की इच्छा है, और इस इंद्र तृप्ति की इच्छा के लिए तो अपनी दो प्रतिज्ञाओं को तोड़ रहे हो और मैं तुमसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। देखिए याद रखिए, कृष्ण रुक्मिणी के साथ जैसे बातचीत कर रहे हैं वैसे ही ये आदान प्रदान है। भगवान भक्त को बोल रहे हो, उस भक्त ने अपनी दोनों प्रतिज्ञा छोड़ दी, उनके साथ चलना चाहते हैं, उनका संग प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान आपसे बोल रहे हैं तुम जो कर रहे हो इंद्र तृप्ति कर रहे हो, और इंद्र तृप्ति के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो, इसमें संतुष्ट कैसे हो सकता हूं? मोर सुख चाह यदि नीला चल चल अमार शपथ यदि आर कुछ ही बल। अगर मेरा संतुष्ट चाहते हो चुपचाप नीला चल चले जाओ, और बोलोगे तो तुम्हें मेरी शपथ है, बोलते मेरी कसम है तुम्हें, मेरी शपथ लगेगी तुम्हें अगर कुछ भी बोला तो, चुपचाप चले जाओ नीलाचल। और ये कहकर महाप्रभु तुरंत नौका में बैठ गए। तो गदाधर पंडित की क्या स्थिति हुई? वो मूर्छित हो गए। और महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला इसको थोड़ा संभाल लेना। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको संभाला, बोला ये महाप्रभु का चरित्र ही ऐसा है, कोई समझ नहीं सकता। जब भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के साथ युद्ध हुआ था तो भीष्म पितामह ने क्या बोला कि मेरे प्रतिज्ञा को रखने के लिए महाप्रभु ने कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इसी ढंग से गदाधर पंडित अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सके इसलिए महाप्रभु ऐसा आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो बात है, प्रेमा विवृत इहा सुने यही जन अचिर मिलिय तानर चेतन चरण। तो कृष्णदास कविराज जी ये जो आदान प्रदान है इसको बोलते हैं प्रेम विवृत। प्रेम विवृत बहुत ही ऊंचा विषय है। विवृत का आवर्तन, विवृत शब्द आवर्तन से आया है। आवर्तन का अर्थ होता है कुछ चाल, कुछ चलना। और प्रेम विवृत का अर्थ है कि एक बिल्कुल उल्टी चाल, प्रभुपाद कहते हैं मिसगिविंग्स ऑफ लविंग अफेयर, प्रेम की ऐसी दिशा जिसमें प्रेम बिल्कुल उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाता है। गंगाधर पंडित के हृदय के अंदर तरह तरह के विरोधी भाव उत्पन्न हो रहे थे जो उनको अलग अलग दिशाओं में खींच रहे थे कि मैंने महाप्रभु के लिए ही नीलाचल में आया, क्षेत्र संन्यास लिया, अब महाप्रभु मुझे छोड़कर चले गए और ऊपर से बोल रहे हैं कि तुम इंद्रतृप्ति कर रहे हो। तो ये सारे के सारे विरोधी भाव अंदर आ रहे थे जो उनको अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे थे। तो ये कहलाता है प्रेम विवृत। ये बहुत ही ऊंची स्थिति है। जगन्नाथ पंडित जी ने भी एक पुस्तक लिखी है प्रेम विवृत। तो इस जंग से जगन्नाथ पंडित वापिस आ जाते हैं और गोपीनाथ जी की सेवा में जुड़ते हैं। इसके बाद एक बार जगन्नाथपुरी में वल्लभ भट्ट आते हैं। वल्लभ भट्ट जी का चैतन्य महाप्रभु के साथ पहले अलाहाबाद में भी उनके साथ उनका संघ हुआ था और तब वह बहुत ही अच्छा उन्होंने महाप्रभु को अपने घर पे भी बुलाया था, प्रसाद सेवन भी कराया था। इस बार वल्लभ भट्ट आते हैं जगन्नाथपुरी में तो अपने साथ एक भागवतम की टीका लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि मैंने जो ये भागवतम की टीका लिखी है इस श्रीधर स्वामी जी की टीका से भी श्रेष्ठ है। तो ये अब सुनते तो महाप्रभु को बहुत क्रोध आता है और महाप्रभु को क्रोध कहते हैं कि जो अपने स्वामी को छोड़कर किसी और के पास जाए वो एक वैश्या है और अगर आपके टीका श्रीधर स्वामी जी की टीका के अनुसार नहीं है तो बिल्कुल ये यूजलेस है, इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन वल्लभ भट्ट पहले बहुत प्रयास कर रहे थे, बार बार चैतन्य महाप्रभु के पास अपनी टीका सुनाने जाते थे और अद्वैताचार्य स्वरूप दामोदर उनको बाहर से भगा देते थे। तो वल्लभ भट्ट किनके पास जाते थे? फिर गंगाधर पंडित के पास जाते थे। और वल्लभ भट्ट आयु में श्रेष्ठ थे और गंगाधर पंडित बहुत ही संकोची स्वभाव के थे तो ना चाहते हुए भी वल्लभ भट्ट जबरदस्ती उनको अपनी भागवतम की टीका सुनाते थे। तो गंगाधर पंडित सुनना भी नहीं चाहते थे क्योंकि गंगाधर पंडित जी को मालूम था कि महाप्रभु उनसे प्रसन्न नहीं है और मैं सुन रहा हूं तो मैं अपराध कर रहा हूं। और बोल रहे कि ठीक है, महाप्रभु तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है, वो तो मेरे भाव को समझ जाएंगे लेकिन जो संगीगण है उनको मुझे क्या समझेंगे। और सारे भक्त लोग भी गंगाधर पंडित से बहुत रुष्ट हो गए। जब महाप्रभु ने मना कर दिया वो ये सुन रहे हैं। तो हम देखते हैं कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि भक्तों के बीच में कैसे गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं और महाप्रभु भी उनसे क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं कि आप वल्लभ भट्ट की कमेंट्री क्यों सुन रहे हैं। और गंगाधर पंडित उनको मना भी करना चाहते हैं लेकिन मना नहीं कर पाते और वो आते हैं जबरदस्ती उनको सुनाते हैं। लेकिन वल्लभ भट्ट जब गंगाधर पंडित का संग करते हैं, वल्लभ भट्ट पहले तो बाल गोपाल की पूजा करते थे, लेकिन गंगाधर पंडित के संग से उन्होंने किशोर गोपाल की पूजा करनी शुरू कर दी और उन्होंने बोला कि आप मुझे कुछ दीक्षा भी दे दीजिए। लेकिन गंगाधर पंडित जी ने बोला, जब दीक्षा की उन्होंने उनसे निवेदन किया, आमी पर तंत्र आमार प्रभु गौर चंद्र तानर आज्ञा बिना आमी न इला स्वतंत्र, कि मैं तो पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु पर निर्भर हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि मैं आपको दीक्षा दे सकूं और वैसे भी महाप्रभु मुझसे बहुत रुष्ट हैं क्योंकि मैं आपकी भागवतम की टीका आपसे सुनता हूं। तो इस ढंग से प्रसंग चलता रहा और जब चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को डांटा, उनके झूठे अहंकार को समाप्त किया, तो फिर वल्लभ भट्ट को मालूम चला कि हाँ वो क्या गलती कर रहे थे। फिर वल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी और उनको अपने घर पे प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया। तो वल्लभ भट्ट के घर में चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, जगदानंद पंडित ये सब प्रसाद पाने जाते हैं, गंगाधर पंडित नहीं आते। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को भेजते हैं कि गंगाधर पंडित को बुला के लाओ। तो जब गंगाधर पंडित को बुला के लाते हैं तो रास्ते में स्वरूप दामोदर गंगाधर पंडित से पूछते हैं कि महाप्रभु तो आपकी परीक्षा ले रहे थे और बार बार वो आपकी अवहेलना कर रहे थे, तो आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? सारे के सारे इतनी कठिनाइयां क्यों सहन करते रहे? महाप्रभु आपकी अवहेलना भी कर रहे हैं, आप पे गुस्सा भी करते हैं, आप चुपचाप सहन करते रहते हो। पंडिता कहे न प्रभु स्वतंत्र सर्वज्ञ शिरोमणि तानर सहने हठ करी भाल नहीं मानी। तो गंगाधर पंडित जी ने उत्तर दिया कि चैतन्य महाप्रभु तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और सब कुछ जानते ही हैं और मैं उनकी बराबरी करके उनसे बहस करूं ये अच्छा नहीं लगता। ये गंगाधर पंडित जी का स्वभाव है, रुक्मिणी देवी का भाव है, दक्षिण स्वभाव है, तो सब कुछ वो सहन करते हैं। बोले कि जब जो कुछ वो करेंगे मैं चुपचाप उसको सहन कर लूंगा और कभी ना कभी तो मुझ पर कृपा करेंगे ही, हालांकि मुझे बहुत दोष है। तो ये कहकर गंगाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के सामने जाते हैं और उनके चरणों में पड़कर जोर जोर से रोते हैं और फिर महाप्रभु उनको उठाकर उनका आलिंगन करते हैं। महाप्रभु कहते हैं, आमी चालियो तो मां तुम्ही ना चालीला क्रोधे किछु न कहिला सकल सहिला, कि मैं तो तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता हूं लेकिन तुम कभी गुस्सा होते ही नहीं और कुछ भी नहीं कहते और सब कुछ तुम सहन कर लेते हो। तो ये कहकर महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और सब भक्तों ने बोला कि महाप्रभु और गदाधर पंडित के बीच में जो प्रेम है, इसलिए महाप्रभु प्रसिद्ध हो गए गदाधर प्राणनाथ के रूप में। गदाधर प्राणनाथ गौरहरि महाप्रभु के, और उनके बीच में ऐसा प्रेम था कि महाप्रभु फेमस हो गए गदाईर गौरांग, कि जो गौरांग है गदाईर है, गदाईर है गौरांग, ये गदाई के गौरांग है। इन दोनों के बीच में इतना प्रेम था, इतनी प्रगाढ़ता थी। तो इस ढंग से गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच में बहुत से सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। गदाधर पंडित गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। हम इसे कितने भक्त लोग हमारे साथ पूरी की यात्रा में जा रहे हैं? अच्छा, वहां हम देखेंगे टोटा गोपीनाथ। टोटा मतलब बगीचा, और वहां गोपीनाथ जी के बहुत सुंदर विग्रह हैं और उस गोपीनाथ की सेवा गदाधर पंडित करते हैं। और एक बार जब गदाधर पंडित गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे थे तो जगन्नाथपुरी में नित्यानंद प्रभु आते हैं। नित्यानंद प्रभु पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही नित्यानंद प्रभु बेहोश हो जाते हैं प्रेमावेश में आकर, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो बिल्कुल अवधूत हैं। वो बेहोश हो जाते हैं तो उनको उठाने के लिए 100 जगन्नाथ जी के सेवक आते हैं, उनको उठा नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको उठाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनका आलिंगन करते हैं सबका, और आलिंगन करके अपने अश्रुधारा से सबका अभिषेक कर देते हैं, नहला देते हैं सबको। तो फिर नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित से मिलने जाते हैं और गोपीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। जब गोपीनाथ के इतने सुंदर दर्शन करते हैं त्रिभंग रूप में, तो नित्यानंद प्रभु बताते हैं गदाधर पंडित जी को कि मैं गोपीनाथ जी के लिए बंगाल से बहुत उत्तम क्वालिटी के चावल लाया हूं, 30 किलो चावल, और साथ में बहुत सुंदर वस्त्र लाया हूं। तो गदाधर देखते हैं, बोले वाह, ये जो चावल है ये तो लगता है बंगाल से नहीं, सीधा वैकुंठ से आए हैं, और लगता है कि वहां पे श्री लक्ष्मी जी स्वयं इन चावलों को बनाकर बनाती होंगे। और ये जो कपड़ा लाए हैं आप, वो गोपीनाथ जी को ऊपर डाल देते हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आप इस चावल को बनाइए और गोपीनाथ जी को भोग लगाइए। तो गदाधर पंडित बड़े उत्साह से वो चावल बनाते हैं और फिर उसी बगीचे से वो इमली के पत्ते निकालते हैं और बहुत सुंदर शाक बनाते हैं, और गदाधर पंडित स्वयं बनाकर गोपीनाथ जी को भोग लगाते हैं। और भोग लाकर जैसे ही भोग लगा रहे होते हैं तभी वहां पर कौन आ जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु। गदाधर गदाधर गदाधर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम नित्यानंद प्रभु चावल का भोग लाए हैं, तुमने उसको बनाया है, गोपीनाथ जी को भोग लगा रहे हो, इतनी बढ़िया फीस्ट और मुझे बुलाया नहीं। अगर फीस नहीं दोगे तो जबरदस्ती मैं महाप्रसाद चुरा लूंगा, ये तो मुझे आपको खिलाना ही पड़ेगा। तो फिर देखिए बहुत सुंदर दृश्य होगा, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित तीनों बैठकर चावल, शाक और बहुत से अलग अलग व्यंजन और इमली की चटनी खाते हैं। आज भी फीस्ट है लेकिन ये मेनू नहीं होगा। लेकिन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित बैठे हैं और फिर महाप्रभु बहुत गुणगान कर रहे हैं। बोले जो ये चावल की सुगंध से ही कृष्ण भक्ति सबको प्राप्त हो सकती है, ठीक है, तो हम जब चावल पाएंगे, आज चावल प्रसाद जरूर पाना, तो इस लीला का स्मरण करना। वो बोले इस चावल की सुगंध मात्र से ही हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, तो महाप्रसाद है। और बोले कि निश्चित रूप से गदाधर पंडित तुमने ये चावल बनाए हैं, अब मैं जान गया तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, तुम छुपा नहीं सकते, निश्चित रूप से तुम वैकुंठ में भी ऐसे चावल बनाकर भगवान को खिलाते होगे, तो ये तुम्हारा स्वरूप है, अब तुम छुपा नहीं सकते। इस तरह से नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु आपस में परिहास करते हैं और महाप्रसाद का सेवन करते हैं। चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर जी कहते हैं, जो इस लीला का श्रवण करता है, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित के गोपीनाथ जी के प्रसाद के सेवन की लीला का श्रवण करता है, उसको बहुत शीघ्र ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, वो गोपीनाथ जी के चरणों की शरण प्राप्त होगी। अरे देखिए कितनी कृपा है, भगवान भक्तों के साथ प्रसाद पा रहे हैं, ये लीला सुनने मात्र से ही हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी है? और गोपीनाथ जी के चरणों की शरण प्राप्त होगी। ये भगवान की लीलाओं में इतनी शक्ति है, और बाकी साधारण व्यक्तियों के हम बड़े बड़े कारनामे में सुन लें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। एक बार यहाँ पर माइकल जैक्सन आए थे बॉम्बे में, बहुत बड़ा शो था, बहुत लाखों लोगों ने देखा, और अगले दिन न्यूज़पेपर में शिवसेना के जो चीफ है बाल ठाकरे, वो कहते हैं कि उनके घर में भी गए थे, तो बोले अब त्यार अनुभव रहा, बोले माइकल जैक्सन यूज माई टॉयलेट, बहुत बड़ी बात है, माइकल जैक्सन ने मेरे टॉयलेट को यूज किया। तो ये जो लीला है ये क्या है, ये क्या है, ये लीला है क्या है? माइकल जैक्सन ने उनका टॉयलेट यूज किया, क्या हो गया इससे? इससे कुछ किसी का शुद्धिकरण होगा और दूषित हो जाएंगे आप लोग। लेकिन यहां पे भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ गंगाधर पंडित के साथ चावल इमली की चटनी और शाक खा रहे हैं बस। और उसका सुनने मात्र से ही, इस लीला को कहने मात्र से ही वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कितनी कृपा महाप्रभु बांट रहे हैं अपने भक्तों के साथ, हमने केवल इसको स्वीकार करना है। तो इस ढंग से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। टोटा गोपीनाथ जी की सेवा गंगाधर पंडित करते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु इसी गोपीनाथ में अप्रकट हो जाते हैं, तो महाप्रभु से एक दो साल छोटे ही थे गंगाधर पंडित, और जैसे ही महाप्रभु अप्रकट होते हैं गंगाधर पंडित बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, एकदम वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उनसे चला भी नहीं जाता। और आप देखेंगे गोपीनाथ जी का विग्रह बहुत ऊंचा विग्रह है, तो गंगाधर पंडित जी से उनसे उनका श्रृंगार भी नहीं होता था, वस्त्र भी नहीं डाले जाते थे, आभूषण भी नहीं डाले जाते थे। तो उन्होंने सोचा अब मैं किसी और पुजारी को रख लेता हूं जो कि गोपीनाथ जी की सेवा कर लेगा। तो जैसे सोचा ही था तो उसी दिन स्वप्न में स्वयं गोपीनाथ जी आते हैं, बोले सोचना ही मत किसी और पुजारी को रखने के लिए, मैं केवल तुमसे सेवा लेना चाहता हूं। देखिए भक्त से भगवान भक्त को चुनते हैं, किस भक्त से मैंने सेवा लेनी है। तो गोपीनाथ जी कहते हैं मैं केवल तुमसे ही सेवा लूंगा, और कोई मेरी सेवा नहीं कर सकता। तो गंगाधर पंडित ने बताया कि मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूं, वृद्धावस्था में हूं, मैं आपका क्या श्रृंगार करूंगा, क्या आपकी सेवा कर सकता हूं। तो भगवान ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं ही थोड़ा झुक जाऊंगा। और जब अगले दिन गंगाधर पंडित द्वार खोलते हैं तो क्या देखते हैं, गोपीनाथ जी वास्तव में थोड़ा सा झुक गए हैं, बैठ गए हैं ताकि भक्त उनकी सेवा कर सके वास्तव में। और अभी हम देखेंगे, हम जगन्नाथपुरी में जाएंगे, जो विग्रह है गोपीनाथ जी का वो झुका हुआ है, भगवान बैठे हुए हैं। एकमात्र विग्रह है पूरी सृष्टि में जिसमें भगवान थोड़ा सा बैठे हुए हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं भगवान कि भक्त मेरी सेवा कर सके। जब भगवान अपने भक्तों की सहूलियत के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में कुछ एडजस्टमेंट करनी चाहिए भगवान की सेवा के लिए, है ना। हम लोग ये ना सोचे जैसे गंगाधर पंडित के लिए भगवान ने अपने आप को एडजस्ट किया तो मैं भी अपना थोड़ा टाइट शेड्यूल बता दूं भगवान को, भगवान बहुत व्यस्त रहता हूं, ये है मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूं, मैं भी कोई पुजारी रख लेता हूं आपकी सेवा करने के लिए, है ना। तो आप कुछ एडजस्टमेंट कीजिए, आप कीजिए, नहीं हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने लाइफ को चेंज करना है ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। हम क्या जानते हैं कि भगवान अपने आप को चेंज कर दे हमारे लिए, कर सकते हैं भगवान अपने आप को चेंज, लेकिन अगर हम गंगाधर पंडित जी के स्तर पे हों तो इस ढंग से गंगाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक बार शुक्लंबर ब्रह्मचारी थे और उनके घर में महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मिलकर बहुत सुंदर कथा कर रहे थे, और जब महाप्रभु कथा करते थे तो सबके सब भक्तगण रो रहे थे, लेकिन गंगाधर पंडित महाप्रभु से बहुत शर्माते थे, संकोच करते थे, उनके सामने नहीं आते थे। तो गंगाधर पंडित एक अलग कमरे में बैठे थे, तो जब कथा चल रही थी और सबका रोना थोड़ा बंद हुआ तब भी जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। तो पूछा अब कौन रो रहा है, तो भक्तों ने बोला कमरे के अंदर गंगाधर पंडित है। तो महाप्रभु कमरे में गए और गंगाधर पंडित कमरे में आलिंगन किया, वो बोले कि तुम असली वैष्णव हो, बचपन से तुम वैष्णव थे और मैंने अपना कितना समय व्यर्थ गवाया फालतू के तर्क करने में, और अब मैं जाके तुम्हारे संग में कुछ सीख पा रहा हूं। तो इस ढंग से महाप्रभु और गंगाधर पंडित के अच्छी अच्छी लीलाएं हैं। तो आज हम गंगाधर पंडित जी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि गंगाधर पंडित वास्तव में उन्होंने अपना सब कुछ चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर दिया। आचार्य ग्रंथ बताते हैं जैसे कि राधा रानी वृंदावनेश्वरी हैं, पूरे वृंदावन की ईश्वरी हैं, इसलिए इसी तरीके से गंगाधर पंडित भी सबके स्वामी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ चैतन्य महाप्रभु को अर्पित कर दिया। तो त्याग की मूर्ति है गदाधर पंडित। तो हम चैतन्य गदाधर पंडित से प्रार्थना करें कि हम भी महाप्रभु के इस आंदोलन में, संकीर्तन आंदोलन में कुछ त्याग की भावना को विकसित कर सकें और चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त कर सके। गदाधर पंडित अनुभाव तिथि महामहोत्सव की, गौर गदाधर की, गौरांगेर गदायर गौरांग की, गदाधर प्राणनाथ गौर हरि की, चैतन्य चैतामृत की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। दक्षिण भाव और वाम भाव जैसे बताया था, दक्षिण भाव का अर्थ होता है भगवान की, जैसे दक्षिण भाव की गोपियां हैं, वाम भाव गोपियां हैं। दक्षिण भाव शांत स्वभाव है, जिसमें कि जो प्रेमी है भगवान से कुछ क्रोध नहीं करते, जैसे रुक्मिणी देवी जी सब कुछ सहन कर लेते हैं, श्रीमती राधा रानी मान करती थी। तो वाम भाव में मान है, दक्षिण भाव में मान नहीं है।
अगर ब्रिटिश
नहीं, नहीं उसका मतलब नहीं है। वामे गदाधर, गदाधर हमेशा बाहिनी तरफ में ही रहेंगे। ये नहीं है कि आप दक्षिण भाव में तो आपको दक्षिण निताय चंद्र वामे गदाधर, तो बाहिनी तरफ ही रहेंगे क्योंकि वो शक्ति है उनकी, लेकिन भाव अंदर के जो आदान प्रदान है वो दक्षिण। ठीक है,
हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने शुरू में बताया था कि जो गदाधर पंडित जी हैं वो ही इज इनकार्नेशन ऑफ राधा रानी जी, कृष्ण एंड ललिता सखी, तो ललिता सखी का आपने बताया था कि क्यों है, ये समझ में नहीं आया कुछ।
ललिता सखी का एक दूसरा नाम है अनुराधा, ये गौर ग्रंथ जन्मदेश दीपिका में बताया गया है। तो जहां जहां राधा रानी जाती है ललिता सखी साथ में जाती है, हालांकि ललिता सखी आगे से अलग से स्वरूप दामोदर जी के रूप में भी हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित हैं तो साथ में ललिता सखी उनके साथ ही हैं। ठीक है, हम भक्तों का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गुरु शीला प्रभुपाद की जय।